તારીખ 9/9/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 35
વિધિ સે વેદ જ્ઞાન કરે કે જીસકે ફલ સે સ્વાનુભૂતિ કી પ્રાપ્તિ હો પ્રથમ સ્વાનુભૂતિ મેં હી સમ્યક દર્શન ઓર સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ બાત તીન મુખ્ય ગુણ સે કહી જાતી હૈ કિંતુ ये सम्यत्व है तो सर्वगुणांश रूप है, सर्वगुणांश को सम्यत्व आत्मा के जितने भी अनंत गुण है उस सर्वगुण की शुद्धि आंशिक रूप में प्रथम ही चतुर्थ गुण स्थान में पाई जाती है। तो कहते हैं कल ये बात चली थी कि रागादि से अनुभव में आने वाले रागादि से अपना भिन्नपना जान करके, रागादि को प्रभाव जान करके, अपना अनुभव में आने वाला ज्ञान वेदन इसकी व्याप्ति, व्याप्ति मैंने व्यापने की क्रिया, ज्ञान को व्यापने की जो क्रिया है उसको व्याप्ति कहते हैं। ज्ञान जानने की क्रिया करता है उसको ज्ञप्ति कहते हैं। परिणाम परिणमने की क्रिया करता है उसको परिणति कहते हैं। ऐसे ये क्रियावाचक नाम है। अनुभव की क्रिया होती है उसको अनुभूति कहते हैं। ये भाषा में ये व्यवस्था है कि वर्तमान चालू क्रिया को कैसे दर्शाना, कैसे बतलाना। तो कहते हैं कि हमारे ज्ञान वेदन की व्याप्ति है, उस व्याप्ति को भी हमें हमारे क्षेत्र से अनुभव करना है। यहाँ पर कहाँ एकाग्र होना ध्यान में, वो बात इस स्टेज में आती है। किस स्टेज में आती है? व्याप्ति के स्थान में आती है। हमें हमारे देह में एकाग्र होना नहीं है, हमारे ओमकार आदि वचन उच्चारण में एकाग्र नहीं होना है, हमारे मन के विकल्प के रागांश में एकाग्र नहीं होना है, हमारे कुछ श्वासोश्वास में एकाग्र नहीं होना है। लेकिन जहाँ हमारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हमारे आत्म प्रदेश रहे हैं, उस क्षेत्र में पूरा जितना देह है उतना हमारा क्षेत्र है। देह प्रमाण, आत्मा का क्षेत्र संसार अवस्था में कितना है कि अपना देह प्रमाण, उस क्षेत्र में व्यापक रूप से अपने वेदन को प्रत्यक्ष तौर से अनुभव में लेना। वेदन होता है तो कभी परोक्ष नहीं होता, उसमें भी ज्ञान स्वयं का वेदन करता है, ज्ञान अंतर्मुख होकर स्वयं का वेदन करता है, अंत तत्व स्वरूप परमात्म पद को लक्ष्य में लेकर और स्वयं के सन्मुख होकर वेदन करता है स्वयं को। उसी वक्त की अवस्था को चली गई, उसको तो वेदन कर नहीं सकते क्योंकि ये भूतकाल की हो गई, वो उपस्थिति ही नहीं है। जो ज्ञान के पर्याय व्यतीत हो जाती है उसका वेदन नहीं हो सकता। जो ज्ञान की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं है, भविष्य के गर्भ में रही है, उसका भी वेदन नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्तमान में चालू है, उसका उसी अवस्था में उस ही अवस्था वेदन करती है, उसमें किसी अन्य माध्यम नहीं होने से वहाँ प्रत्यक्ष वेदन आता है। तो अपने रूप वेदन आता है। कैसे आता है? कि अनुभूति है सोई में हूँ, ऐसा जो अपने आप में अपना वेदन, वही आत्मज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही आत्म प्रतीति है, और वही आत्म ध्यान है। ज्ञान भी ज्ञान वही है, एकाग्रता होने से ध्यान भी वही है, और जैसे अनुभव में आया, जैसा अनुभव में आया वैसा ही मैं हूँ, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति को सम्यक दर्शन कहने में आया है। अनुभव में आया जैसा वैसा ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव ज्ञान पूर्वक, क्या अनुभव ज्ञान पूर्वक ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त, प्रतीति से प्राप्त ज्ञान नहीं लिया, क्या प्रतीति से प्राप्त ऐसा ज्ञान नहीं लिया, लेकिन आत्मज्ञान से प्राप्त प्रतीति, आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला कैसा, यह आत्मा जैसा जानने में आया वैसा ही है, फिर शंका नहीं होती। अनुभव में जैसे आया वैसा ही है, ऐसी प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान, ऐसा सम्यक दर्शन, श्रद्धान मैंने यहाँ सम्यक दर्शन उदित होता है, उसका नया जन्म होता है, सम्यक दर्शन का नया जन्म होता है। जो भी अनंत काल पहले सिद्धालय में गए हैं, सब पहले संसारी थे। कैसे थे? पहले सब संसारी थे। सबको सम्यक दर्शन की आदि होती है और मोक्ष दशा की भी सबको आदि ही होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को अनादि से सम्यक दर्शन की या सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। जैन दर्शन की कितनी की बातें गणित के अंक से पार है, बियॉन्ड मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं। जैसे कि काल अनादि अनंत है, कोई गिनती नहीं, और वृक्ष भी अनादि, बीज भी अनादि, पहले वृक्ष हो इसमें बीज पैदा हो ऐसा नहीं, और पहले बीज हो उसमें से वृक्ष हो ऐसा भी नहीं। क्यों? कि बीज बिना वृक्ष नहीं और वृक्ष बिना बीज नहीं। पहले कौन? दोनों अनादि है। ऐसे प्रत्येक आत्मा सिद्धालय में सादी विराजमान है, फिर भी सिद्धालय में अनंत सिद्धात्मा अनादि से विराजमान है, और जो अनंत विराजमान है उसमें प्रत्येक सादी विराजमान है। ये स्तुत ज्ञान के विकल्प विचार चिंतन से पार चीज है, इसलिए उसको अचिंत्य गिनने में आया है। कभी सिद्धालय खाली था और पहले कोई सिद्ध पहुंचा, ऐसा कभी नहीं बना है। अनंत सिद्ध अनादि से है, और जो अनंत है वो प्रत्येक की आदि हुई है। कैसे करेंगे? तर्क लगाएंगे? ये तर्क से पार चीज है, गिनती से ये कोई अचिंत्य बात है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। जहाँ श्रद्धान उदित तो होता है तभी समस्त अन्य भावों का भेद हो जाने से अन्य भाव में राग द्वेष आदि जितने भी विभाव परिणाम हैं उनका भिन्न रूप से अनुभव हुआ, उनका पर रूप से अनुभव हुआ। राग होता है साधक जीव में, सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ उसको भी राग तो होता है। राग का नाश होगा तो बारहवें गुण स्थान में, जो यथाख्यात चारित्र होता है, पूर्ण चारित्र होता है, पूर्ण वितरागता वहां होती है, वहां राग का सर्वथा नाश होता है। इसके पहले कुछ अंश में नाश होता होता सर्वनाश होता है, क्रमशः नाश होता है। श्रद्धान की तरह एक साथ पूरी श्रद्धा होवे ऐसा एक साथ पूरा चारित्र कभी नहीं होता, ऐसा इनका स्वयं का धर्म है, स्वयं का स्वरूप है। ये तो कहते हैं कि समस्त अन्य भावों का भेद मैंने जुदाए होने से, जुदा कैसे हो जाता है, जैसे हम एक अपना मकान बेच देते हैं उसका डॉक्यूमेंट हो जाता है, उस पर दस्तखत हो जाता है और पैसा हमें मिल जाता है, तो क्या हो गया, ये मकान से हमारी जुदाई हो गई। मकान वहां का वहां है और हमने ये शर्त भी की हो कि हमारा कुछ सामान है इसलिए हमारा ताला लगा हुआ है, पैसा मिलने से हमारा ताला भी खोल देंगे और सामान भी उठा लेंगे। उस काला ताला खोलते हैं और सामान उठाते हैं, उस वक्त मकान तो वहां का वहां है, हम भी यही मकान में हैं, फिर भी हमारी इस मकान से जुदाई हो गई। ये स्वामित्व उड़ जाता है, क्या होता है, ये स्वामित्व उड़ जाता है। गुरुदेव तो इससे भी एक बहुत बहुत अनुभवपूर्ण दृष्टांत देते थे कि जैसे हमारे घराने में लड़की की बच्चे की हम सगाई करते हैं तो जिस वक्त सगाई की विधि संपन्न हो जाती है, हाँ हमारे यहाँ वो कंवर साहब तो श्रीफल देते हैं, लड़के के जो भाई हैं वो श्रीफल हाथ में देते हैं, माला पहनाते हैं, तब से क्या होता है लड़के के मानस में, गुरुदेव बहुत सुंदर अपनी भाषा में ये दृष्टांत लेते थे कि ये घर भी मेरा नहीं है, अभी तो इस घर में से गई नहीं, अभी तो जब शादी होगी तब जाएगी, लेकिन घर में होते हुए भी जितने दिन जितने महीने उनको ये घर पराया लगता है और जो वर का घर है वो अपना घर है, जो भी ससुराल का घर है वो अपना घर है, ऐसा इसकी परिणति में जुदाई हो जाती है, स्वामित्व उड़ जाता है कि मेरा नहीं। ऐसे राग तो हुआ सम्यक दृष्टि के पर्याय में लेकिन पराया हो गया, वो अपना नहीं रहा, ऐसी एक अनुभव की परिस्थिति बनती है। क्या एक अनुभव की अंदरूनी परिस्थिति है जो सम्यक दर्शन होने के बाद सारी की सारी बदल जाती है। जब राग हमारा नहीं तो राग के विषयभूत जितने भी पदार्थ हैं, कुटुंब परिवार मकान मिलकत आबरू कीर्ति कपड़े जो कुछ भी है उसमें कहीं अपनापन अनुभव में आता नहीं। लोक व्यवहार से ये कहेगा, सम्यक दृष्टि भी ये कहेगा कि मुझे बुखार आया है, क्या कहेगा, लेकिन वास्तव में वो शरीर में अपनापन अनुभव करते नहीं। बुखार को, शरीर की उष्णावस्था को तो अपने से भिन्न ज्ञान से भिन्न अनुभव करते हैं। बहुत चमत्कारिक विषय है। इसलिए सम्यक दृष्टि को वेदना के काल में वेदना का भिन्न अनुभव होता है। सभी प्रकार की प्रतिकूलता के दुख के समाधान हम कुछ न कुछ निकाल लेते। जैसे पैसा चला गया, निर्धन हो गए तो मेहनत करके कमा लेंगे, क्या कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जिस वक्त वेदना चलती है, उस वेदना को तन्मय रूप से भोगे बिना जीव का छुटका नहीं होता। तो कुछ बुद्धिमान पुरुषों ने इसका बहुत गहराई से अन्वेषण किया, खोज किया कि हमें वेदना नहीं वेदनी पड़े, ऐसा कोई रास्ता निकाल सके क्या। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला भेद ज्ञान का, कि शरीर की पर्याय को हम जाने, वेदना रूप शरीर के परमाणु की पर्याय को हम जाने, भिन्न रूप से जाने। कैसे जाने? भिन्न रूप से जाने, और उस वेदना के काल में वेदना का अनुभव दुख रूप नहीं करें, लेकिन आत्मा का सुख रूप अनुभव करें। सुखी होते होते वेदना को जाने। जी, सुखी होते होते वेदना को जाने। चमत्कारिक विषय है ये। और इससे बड़ा चमत्कार तो वो है, ज्ञानियों की भूमिका में, ज्ञानियों की दशा में, कि वेदना के काल में सामान्य संसारी जीव दुखी होते होते उतने दुखी हो जाते हैं कि बहुत कर्म बंधन कर लेते हैं। उसी वक्त मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बहुत निर्जरा कर लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ ज्यादा बंधन में पड़ता है मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्यादा निर्जरा करके अधिक कर्म से मुक्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी को वेदना का भय नहीं होता। आता है संसार में ज्ञानी सप्त भय से विमुक्त होता है। उसमें यह लोक का भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, वेदना का भय, चोरी का भय, अकस्मात का भय, ऐसे सभी प्रकार के भय उसमें आ जाते हैं। कोई भय बाकी नहीं रहता। तो वेदना आए पहले वेदना का भय हो जाता है। कैसे? कि कोई शरीर में वेदना चालू हुई, डॉक्टर कहेंगे कि हमको उसका पैथोलॉजिकल टेस्ट, कि गले में होता है ना कैंसर, तो गले में वेदना चालू हुई, डॉक्टर ये कहेंगे कि यहाँ से सैंपल निकालेंगे और मैलिग्नेंसी का टेस्ट किया जाएगा। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंसी कहते हैं उसको। रिपोर्ट में मेलिग्नेंसी आएगी वा नहीं आएगी वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जब टेस्ट के लिए उनको ले जाते हैं लेबोरेटरी में, कितना भय होता है। जिनको होता है उनको पता चलता है कि उनके पैर ध्रुजने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहीं लोग कोई ध्रुजने लगते हैं, बहुत हालत खराब हो जाती है। ज्ञानियों को ऐसा नहीं होता। वेदना के काल में अधिक पुरुषार्थ करते हैं, मृत्यु को तो वो महोत्सव मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा मरती नहीं। क्या? आत्मा कभी किसी की नहीं मरती, लेकिन जिसको भ्रम है कि मैं मर जाऊंगा उसको मृत्यु तुल्य दुख होता है। आत्मा इसकी भी मरती नहीं। अगर आत्मा किसी की आत्मा पूर्व भव में मर गई होती तो अभी कोई जिंदा नहीं होता। हम अब जिंदा हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम कभी मरे नहीं थे। लेकिन जब जब जय छूटने का काल आया, मृत्यु तुल्य वेदना हुई है। मरा नहीं कोई। ज्ञानी को ये शाश्वत पदार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव होने से, कैसा? शाश्वत पदार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव होने से उनको देह छूटने के काल में पुरुषार्थ उतना बढ़ता है, सुख शांति उतनी बढ़ती है। कोई कोई धर्मात्मा तो निर्विकल्प आनंद की दशा में भी शुद्धोपयोग में आ जाते हैं और देह छूट जाता है, और इस वक्त अधिक से अधिक निर्जरा हो जाती है। तो ये प्रसंग तो लाया नहीं जाता, ये प्रसंग कोई लाया नहीं जाता। जब आयु पूर्ण होने के काल में स्वयं आता है तो ज्ञानी सावधान हो जाते हैं, अपने स्वरूप में सावधान हो जाते हैं, और स्वरूप में तीव्र पुरुषार्थ की गति उसकी चालू हो जाती है। पूज्य बहन श्री के वचनामृत में एक दृष्टांत लिया है कि जैसे कोई बालक है, अपनी माता का पल्लू पकड़ करके बाजार में चलता है, और बाजार में कोई भीड़ बढ़ गई तो क्या करेगा? 5 साल का बालक है, 5-6 साल का बालक पल्लू पकड़ के चलता है तो उसको ये लगता है कि कहीं मैं किसी की ठोकर लगने से अलग हो जाऊंगा तो मेरी माँ आगे चली जाएंगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं अलग हो जाऊंगा, मैं भुला पड़ जाऊंगा, घर पे पहुंच सकता नहीं। तो भीड़ बढ़ने से वो पल्लू को जोर से पकड़ता है। क्या करता है? जो साड़ी का पल्लू है उनको मजबूती से पकड़ेगा। ऐसे जब जब धर्मात्माओं को प्रतिकूलता की भीड़ होती है, उस भीड़ में वो आत्मा के पल्लू को मजबूती से पकड़ते हैं। घबराते नहीं, कभी हारते नहीं, घबराते नहीं। ऐसी सहज परिस्थिति होती है, करना नहीं पड़ता। भीड़ होते ही सतर्क हो जाते हैं ना, वैसे ही संयोग की भीड़ में सतर्क हो ही जाते हैं। तो इनके लिए ये विशेष पुरुषार्थ का समय है, ये विशेष पुरुषार्थ का ये प्रसंग है, काल है। इसलिए ये प्रतिकूलता का काल नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता ही इनके लिए तो अनुकूलता है। अंतर में प्रतिकूलता ही अनुकूलता को पलट देते हैं। लोग ये समझते हैं कि अरे इनको कितना पाप का उदय आया। लोग क्या समझेंगे अपनी दृष्टि से? कि इनको तो बहुत बड़ा पाप का उदय चल रहा है, वेदना बहुत है, ऐसा बहुत है, वैसा बहुत है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी नजर में ये पाप का उदय है, हमारी नजर में तो हमारे पुरुषार्थ बढ़ाने का उदय है, प्रसंग है। ये अधिक निर्जरा हो जाएगी, अधिक शुद्धि होगी और हमारी सुख शांति अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। एक श्रीमद रायचंद्र जी ने अपने एक मुमुक्षु को, कोई इनको वेदना का प्रसंग हुआ है और कुछ इसकी पात्रता योग्यता अच्छी है, तो मुमुक्षु की भूमिका में वो विषम परिणाम से वेदना को नहीं वेदता हुआ कुछ समभाव से सम परिणाम से वो वेदना को अनुभव करता है, इसकी चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आपकी कृपा से मुझे इस वेदना के काल में भी सम परिणाम रहा है, समभाव से ये प्रसंग चला है। इसका जो चिट्ठी लिखा तो उन्होंने बहुत सुंदर एक पत्र लिखा है, इस पत्र का पत्रांक है 913 नंबर के पत्र में दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है कि कुछ विचारवान लोगों ने इस वेदना के अनुभव को नहीं चाहते हुए इसका कौन सा रास्ता निकाले, इसको दूर करने के लिए क्या करें, क्योंकि दवाई भी फैल जाती है, डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने विचारवान लोगों ने क्या किया कि इनको मिटाने के लिए, इनके उनको दूर करने के लिए इसके कारण कार्य की गहराई में गए, उतनी गहराई में गए कि ये वेदना चीज क्या है। जैसे सुख को मटेरियलाइज किया जाता है, वैसे उन्होंने दुख को मटेरियलाइज किया कि कहां से पैदा हुई। तो कि पूर्व में हमने कुछ ऐसे अपराध किए थे जिससे ये असाता वेदनी का कर्म बंधन होता है, इनके बहुत से कारण होते हैं, असाता वेदनी के बंधन के अनेक कारण हैं, लेकिन एक सादा सीधा कारण है ये हम लोगों को जानना प्रयोजनभूत है, इसलिए बताता हूँ कि जो खाना खाने में ज्यादा रस लेते हैं उनको असाता वेदनी का बंध तीव्रतया होता है। क्या? इसलिए भोजन कैसा भी हो, क्या इसलिए भोजन कैसा भी स्वादिष्ट हो, इष्ट हो, मिष्ट हो, स्वादिष्ट हो, रस से खाना नहीं है, फिर खाने की मजा कैसे आएगी अजीत बाबू? अगर निरस बने से खा लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगी? हाँ, कि ये मजा लेने में वेदना को भोगनी पड़ेगी, क्या? अगर मजा लेनी है तो अब तो मजा आएगी, लेकिन आगे जाकर के जो भी इससे पैदा होने वाला रोग ये परमाणु सत्ता में जाता है, उसका स्थिति पड़ता है, स्थिति पूरे होने के बाद उसका विपाक आता है और वेदना चालू हो जाती है। इसलिए ज्ञानी नीरसता से भोजन लेते हैं, रस से भोजन नहीं लेते, और रस से भोजन लेना भी नहीं, जिमना भी नहीं, और जिमाना भी नहीं, क्या? जिमना भी नहीं, जिमाना भी नहीं, और जो जिमता है उसके रस का अनुमोदन भी करना नहीं, करना कराना अनुमोदना तीनों का एक फल है। क्या किया? आइंदा ख्याल रखना परोस परोसकारी में, हाँ, न जिमना है न जिमाना है रस से, और न जिमने वाले के रस को हमें अनुमोदन भी करना है अगर वेदना नहीं चाहिए तो। ये बात है। स्वाध्याय में तो बहुत सी बातें थोड़ी थोड़ी आई जाती है, कहाँ कहाँ हमें सावधानी रखनी है, कहाँ सावधानी रखनी है, किन किन बातों में रखनी है, कैसे कैसे रखनी है। ज्ञानियों ने तो एक जनरल सूचना, सामान्य सूचना दे रखी है कि भैया किसी भी प्रकार के तेरे उदय होने संसारी जीव को आठों कर्म का उदय निरंतर चलता है, एक समय भी खाली नहीं है कि जहां आठ कर्म का उदय नहीं चले, एक विग्रह गति में आयु कर्म का उदय नहीं है। इधर आयु पूर्ण होता है, नया वहां शुरू होगा। रास्ते में जो मुसाफरी है तो सफर में एक गति से दूसरी गति में इसकी सफर में प्रवेश करना, तीव्र रस में किसी भी उदय में कार्य नहीं करना जिससे तीव्र कर्म बंधन हो जाए और हम बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ को गंवा दे। ऐसी परिस्थिति में कहीं भी उदय का कार्य नहीं करना है। ऐसी सामान्य सूचना सभी ज्ञानियों ने दे रखी है कि किसी भी उदय में तीव्र रस से परिणमन होना ये जीव को तीव्र बंधन का कारण है और यही जीव को दुख का कारण है। ये दुख को मटेरियलाइज किया, यही दुख का कारण है। जो धर्मात्मा या जो मुमुक्षु भेद ज्ञान करता है वो राग को जैसे पराया अनुभव करता है ऐसे वेदना को भी वो पराया अनुभव कर सकता है। तीव्र वेदना हो तो तीव्र जाने, मंद हो तो मंद जाने, लेकिन सुख का अनुभव करते करते जाने, दुख का अनुभव करते करते नहीं जाने। ऐसा एक चमत्कारिक उपलब्धि मोक्ष मार्ग में होती है। ऐसी चमत्कारिक उपलब्धि मोक्ष मार्ग में होती है कि वेदना होते हुए भी वेदना को नहीं भोगे। आप कहेंगे कि ये बात संभव नहीं दिखती, भले ही शास्त्र में लिखी हो और पंडित लोग भले ही कहते हो क्या, लेकिन ये बात संभव नहीं दिखती। वेदना का अनुभव नहीं कर सके ये बात संभव हो ही नहीं सकती, लगता ही नहीं। हमारा अनुभव ये बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सुनिए हो सकता है, कैसे हो सकता है। कि समझो कि किसी एक घराने में कोई 25 साल से इकलौता लड़का गुम हो गया। क्या हो गया? इसको कोई अपहरण करके ले गया। साल, दो साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए। हाँ, पर जब ये अकस्मात उसका आना होता है, पर उस काल में किसी को बहुत तीव्र वेदना हो, क्या तीव्र वेदना में चिल्लाता हो क्या, और उसी को समाचार मिले कि ये आपका बेटा आ रहा है, जो सामने से जवान लड़का आता है, बचपन में कोई उठा ले गया था लेकिन वो आ रहा है, तुम्हारा बेटा है, क्या होगा वेदना का? क्या होगा कि उपयोग वेदना से हट जाएगा, पैर में वेदना होगी, चलता चल नहीं सकता था लेकिन दौड़ के जाएगा, एक कदम भी चलना मुश्किल था वो दौड़ के जाएगा और उसको अपने भेंट में ले लेगा, इतना भेंट से वो उनको भेटेगा। कहां गई वेदना? मिट गई थी क्या? नहीं मिटती है। एक तीव्र कषाय दूसरी मंद कषाय को धक्का दे करके हटाती है, हटाती है कि नहीं हटाती? जब एक कसाई भी दूसरी कसाई को हटाती है तो ज्ञानी का पुरुषार्थ अपने अनंत सामर्थ्य में से निकला हुआ है और कोई अलौकिक सामर्थ्य से उसका परिणमन हो रहा है। कि जिसको समय सार में तो ये कहते हैं कि वज्रपात हुए, क्या हुए, इस तीन लोक हिल जावे, 14 ब्रह्मांड हिल जावे, ऐसा वज्रपात होवे तो भी ज्ञानी अपने पुरुषार्थ से विचलित तो होते नहीं। ऐसी ताकत है उसमें, उतनी ताकत से वो निर्जरा करते हैं, तो उसको वेदना से भिन्न अनुभव पूरी संभावना से होता है। ये कोई कल्पना नहीं, यही नहीं है कल्पना, यही नहीं विभंग, श्रीमद् जी का एक पद है, यही नहीं है कल्पना, यही नहीं विभंग, कैनर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। कैसी वस्तु देखी? कि जिसमें भंग नहीं, भेद नहीं, जिसमें विकल्प नहीं, ऐसी निर्विकल्प भेद वस्तु को अभेद भाव से अनुभव करने के लिए ये अमोघ मंत्र है, वो समयसार की गाथाएं हैं। क्या है समयसार? समयसार है वो अमोघ मंत्र है। राम बाण मंत्र है। क्या है? राम का बाण खाली नहीं जाता, ऐसे वो विद्याधर थे, इनका बाण कभी खाली नहीं जाता। रावण के 10 सिरों का छेद कर दिया फटाफट, खाली नहीं जाता वो। ऐसे ये जिनेंद्र देव का मंत्र है, जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि से ये मंत्र चला आ रहा है, उसमें बहुत ताकत भरी है, अलौकिक ताकत भरी है। और बहुत बहुनर पंचम काल में, इस पंचम काल में भी बहुत मनुष्यों ने इसका अनुभव किया है, बहुत बहुत मनुष्यों ने अनुभव किया, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, अभी भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। करने का दृढ़ निर्धार चाहिए, करने की लगन चाहिए, उसको मोक्षार्थी कहने में आया है। ये मोक्षार्थी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कहते हैं कि ऐसा समस्त अन्य भावों से भेद होने से निशंक स्थिर होने के समर्थ हुए हैं, स्वरूप में उपयोग की स्थिरता जम जावे, लीनता होवे, एकाग्रता हो जावे, उसको यहाँ स्वरूप ध्यान कहते हैं, उसको यहाँ आत्म ध्यान कहते हैं, उसको यहाँ धर्म ध्यान कहते हैं, उसको ही सच्चा ध्यान कहने में, सम्यक ध्यान कहने में आया है। ये धर्म ध्यान है, सच्चा ध्यान है, और इसको छोड़ करके जितना भी ध्यान है वो अप ध्यान है, सच्चा ध्यान नहीं है, वो झूठा ध्यान है। आत्मा को, अपने परमात्मा को छोड़ करके किसी और का ध्यान करने लायक नहीं है। ये दीपचंद जी साहब तो अनुभव प्रकाश में कहते हैं कि अरे भैया, ये तेरा परमेश्वर पद है, इससे इस जगत में दूसरी कौन सी चीज उत्कृष्ट है कि जिससे तू इनको छोड़ करके दूसरे का ध्यान करता है? क्या बात है? पूछते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि तेरा जो परमेश्वर पद है, निज जिन परमात्मा, निज और जिन, सिर्फ उनकी रसवई बदलनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। हाँ, इधर उधर अक्षर को कर दो। निज जिन परमात्मा को छोड़ करके कौन सी बड़ी चीज है, कौन सी उत्कृष्ट चीज है जिसके लिए तू इनका ध्यान छोड़ करके दूसरा का ध्यान करता है? कि दूसरों को ध्यान करने लायक कोई चीज जगत में नहीं है। तेरा सुख भी इधर है, तेरी शांति भी इधर है, तेरा आनंद भी इधर ही इधर है, और तेरी सुख शांति आनंद और कहीं है ही नहीं। इसलिए अन्य समस्त भावों से जुदाई हो जाने से, अनुभव में जुदाई हो जाने से,
निशंकतया स्थिर होने के समर्थ हो जाने के कारण से आत्मा का आचरण उदित हो करके आत्मा को साधता है। कैसी भाषा ली है अमृतचंद्राचार्य देव ने कि आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। वो आचरण में आत्मा साधा जाता है, ये आचरण आत्मा का साधता है आत्मा को। ऐसे ही इस विधि से ही साध्य जो आत्मा, उसकी जो सिद्धि, यही इसकी उपपत्ति है, प्राप्ति की विधि है। तीन को, तीन काल, तीन लोक में दूसरी विधि नहीं है। जिन महात्माओं ने सिद्धि को प्राप्त की, जो सिद्धि को वरे, उन्होंने ये बात को फाइनल किया है कि एक ही रीत है मोक्ष मार्ग की, परमार्थ की कोई दो रीत नहीं होती। तुम आज पकड़ो, देर सवेर कभी भी समझो, ग्रहण करो, लेकिन एक ही रीत है, उसको पकड़ो, ग्रहण करो, दूसरी रीत को कभी ग्रहण करना नहीं। जगत में बहुत से लोग हैं, कहने वाले हैं हमारे पास आओ, हम आपको समझाएंगे, हम आपको बताएंगे, दर्शाएंगे, सिखाएंगे, इस रीति से मोक्ष होगा, उस रीति से, कोई कई बताएगा, कोई किस बताएगा, कोई कैसे बताएगा, कोई कैसे बता देगा। लेकिन हमारे सर्वज्ञ परमात्मा ने, और यहां से जिन्होंने माल लिया है, ये आचार्य है, मुनिराज है, उनके एजेंट है, कौन है ये सर्वज्ञ देव के, जिनेंद्र परमात्मा के एजेंट है। मूल कंपनी का माल, सही माल, असली माल वहां मिलेगा, और जगह असली माल नहीं है लेकिन नकली माल मिलेगा, इसलिए कहीं और जाना नहीं है। जिन मत को छोड़ करके, जिनेंद्र देव को छोड़ करके, और जैनियों को, जैनाचार्यों को, जिन मुनियों को छोड़ करके, और जैनियों को छोड़ करके दूसरे मत में कहीं भी जाना नहीं है, ये बात फुल एंड फाइनल है। कहीं भी आगे पीछे जा करके भ्रमित होना नहीं, भ्रमणा में नहीं पड़ जाना, क्योंकि ये अनुभव से सिद्ध हुआ मार्ग है। और भी वितराग थे, उनको कहीं लेना देना नहीं था, वे निष्प्रा थे, कोई स्पृहा नहीं थी उनको, इसलिए उन्होंने कहीं आशा के कारण भी कभी अन्यथा बात, झूठी बात, कोई विपरीत बात, कोई बात नहीं की। जो बात कही वो सही कही, सत्य कही, कि मुझे कुछ तुमसे चाहिए नहीं, मैंने जो सिद्धि प्राप्त की है। अब वितराग भाव पूर्वक ये वाणी चल रही है कि मार्ग ऐसा है, कभी मत भूलना कि मार्ग दूसरा है, ऐसा कभी भूल से भी विचार करना नहीं है, ये बात है, पकड़ के रखना। देर सवेर होए उसकी चिंता नहीं, लेकिन जल्दबाजी में कहीं भी हम भूल से अन्यथा उपाय नहीं कर लें, इसकी सावधानी तो अवश्य अवश्य रखनी है, क्योंकि ये नुकसानी का धंधा हो जाएगा, व्यापार करना जाएंगे नफा के लिए और काम हो जाएगा नुकसानी का। इसलिए तो अब एक बहुत सुंदर बात करते हैं आचार्य महाराज आगे जा करके, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अबाल गोपाल सभी को सदा काल स्वयं ही अनुभव में आता है, क्या है? एक बहुत कठिन प्रश्न का उत्तर चल रहा है। कौन सा कठिन प्रश्न है ये? कि उस प्रश्न में वो बात है देखिए ये जो आत्मा के आत्मज्ञान की सम्यक दर्शन की स्वरूप चारित्र वितराग चारित्र की जो बातें कही ना आपने, ये तो बहुत कठिन चीज है इस काल में। क्या ये पंचम काल में और हमारे जैसे साधारण प्राणियों को क्या है, लोग ऐसे हमारा देश है वो आर्थिक ढंग से बहुत साधारण है। 100 परिवारों में से 90 से अधिक 92-93 या 95% ऐसे हैं कि जिसको अपनी रोजी रोटी के लिए सारे दिन व्यस्त रहना पड़ता है, टाइम ही नहीं मिलता। कोई 2-5% ऐसे हैं कि जो श्रीमंत लोग हैं लेकिन वो अपने भोग विलास में इतने चकचूर है कि इनको भी आत्म कल्याण को विचार करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि आज तो बहुत से साधन भी उपलब्ध हैं इनके। तो बात तो ये रहती है कि कोई भव्य होता है, भव्य मैंने आसन भव्य होता है, उनको ये विचार आता है चाहे श्रीमंत हो चाहे दरिद्र हो चाहे मध्यम कक्षा वाला हो कुछ भी हो, कोई हरकत नहीं है उसमें। उनको ये होता है कि मैं इस संसार से, इस दुखमय संसार से कैसे छूटूं, तो ढूंढता है रास्ता को। तो ऐसा कभी हमें अभिप्राय को फिक्स नहीं करना है, ऐसी अभिप्राय की आड़ नहीं लगानी है कि ये बहुत कठिन मार्ग है। बहुत कठिन है इसलिए हमारा साधारण लोग का काम नहीं है, ऐसी आड़ कभी नहीं लगानी, कभी नहीं लगानी। इसका उत्तर चल रहा है कि ये भगवान आत्मा आबाल गोपाल को अनुभव में आ रहा है। किसी को भी छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, श्रीमंत हो दरिद्र हो कुछ भी हो, रोगी हो निरोगी हो, राजा हो रंक हो कुछ भी हो, सभी को वो अनुभव में आ सकता है। अरे अनुभव में आ सकता है ऐसा नहीं है, अनुभव में आ ही रहा है। क्या कहते हैं, बहुत सरल और सुगम कर दिया आचार्य महाराज ने, कोई कठिनाई नहीं है तुझे। क्या कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ध्यान किसी कोई विरल जीव का जाता है। लेकिन मनुष्य कितने हैं, जहां भी हम आवागमन कर रहे हैं वो करीब 585 करोड़, मैंने 6 अरब करीब करीब की हमारी संख्या है सारे विश्व में, इतने तो मनुष्य गति हमारे देखने में मिलते हैं। है तो बहुत, महाविद्या आदि में असंख्य मनुष्य है, लेकिन अभी हमारी जो दुनिया है जिसमें हम आते हैं जाते हैं वो करीब 6 अरब की आबादी है सारे विश्व के। इसमें कहीं किसी भी विज्ञान में किसी भी धर्म के मत में संप्रदाय में ये मार्ग नहीं है, जिन मार्ग कहीं नहीं है। तो कितना दुर्लभ हो गया कि 1 करोड़ के भीतर भीतर मैंने परसेंटेज निकाले तो 0.06 आएगा। इतनी जैनियों की बस्ती है मनुष्यों में, और जैनियों में भी दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी 13 पंथी 20 पंथी वो पंथी। तो उसमें भी दिगंबर कितने हैं, क्योंकि श्वेतांबर के शास्त्र में ये मार्ग खुल करके नहीं आया, सिर्फ दिगंबरों के शास्त्र में है। दिगंबरों कितने के, जितने भी हो कितने भी लाख हो, उसमें स्वाध्याय करने वाले कितने शास्त्र के। ये तो ये गुरुदेव की कृपा है, ये इनकी बड़ी देन है कि हम लोग आज स्वाध्याय करते हैं, वरना हम भी माथा फोड़ के निकल जाते मंदिर में से, फोड़ के मैंने ऐसे करके निकल जाते, स्वाध्याय के लिए बैठते नहीं। उस स्वाध्याय करने वालों में भी इस महामूल्य चीज की गहराई में जाने वाले कितने चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इन्हें गिने लोग हैं। इसलिए संख्या की अपेक्षा से ये बहुत दुर्लभ है, और बहुत दुर्लभ होने पर भी हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। इम्तिहान में क्या करेंगे लड़का, ये जो FRCS है इसका रिजल्ट कैसा आता है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट में कितना आता है रिजल्ट, कितने परसेंट देते हैं, कितने 100 आदमी से कितने को पास करते हैं, परसेंट कितने हैं, 15% 4% है, जब उन्होंने पास किया उस वक्त 4% में पास करते थे, पर ये FRCS वगैरह हैं उनमें तो 1% 1.5% 1.25% ऐसे ही निकलते हैं। 5-5 परीक्षा देते 5-5 साल तक निकलते नहीं, इतने परसेंट तो इतने से भी कम है, लेकिन जिसको पास होना है इसका मूड कैसा होता है कि मैं पास होऊंगा, उतना ही नहीं मैं फर्स्ट क्लास पास आऊंगा, क्या फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होने वाला हूं मैं, ऐसा जोर से तैयारी करेगा। ऐसा हमें भी भले ही तत्व को प्राप्त करने वाले की संख्या भले कम हो, लेकिन इस कम संख्या में हमारा नंबर है और है, ऐसा लेना है। कोई बात आसान है, जब इस मूड में आ जाएंगे आप तो आपके लिए ये काम करना बहुत सुगम सरल और आसान है। वो कैसे हैं, कितनी सरल है, वो बात इस पैराग्राफ में आचार्य महाराज खोलेंगे। बहुत सुंदर बात किया है इधर, समय सार महान ग्रंथ है, फिर भी सरल से सरल और सुगम से सुगम बात भी आचार्यों ने रखी है। तो आज का समय पूरा होता है, इसका स्वाध्याय हम
ज्ञान ज्ञान जिया।